श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की प्रकरण के 66वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 67वें श्लोक की चर्चा होनी है। ये बात बताई गई कि निर्गुण उपासना भी उपनिषद प्रतिपाद्य होने से प्रामाणिक है, प्रमाण सिद्ध है। और प्रमाण सिद्ध अर्थ को अपनाने वाले अधिक न होने मात्र से, जिसे उस प्रमाण सिद्ध अर्थ से होने वाले प्रयोजन की अपेक्षा है, उसे उस प्रमाण सिद्ध अर्थ का परित्याग नहीं करना चाहिए, उसी में लगे रहना चाहिए। मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु कम है, तो जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष के साक्षात साधनभूत आत्मज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष के निवृत्ति के उपाय के रूप में निर्गुण ब्रह्म उपासना साधन बताई है उपनिषदों ने। इसलिए जब तक विपरीत भावना निवृत्त नहीं होगी, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, अपेक्षित मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और मोक्ष चाहने वालों की संख्या कम है, संसार चाहने वालों की अधिक है, तो संसार का साधन जो बताया गया है सगुण उपासनाएं, वो करते हुए अधिक दिख रहे हैं। इतने मात्र से मुमुक्षु को आत्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना का निवर्तक निर्गुण ब्रह्म उपासना रूप साधन नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहा गया। अब ये कहते हैं कि एवं प्रासंगिकम परिसमाप्य प्रकृतम अनुसरति। प्रासंगिक जो बात थी उसे छोड़ करके जो प्रकृत बात है उसे बताते हैं। प्रकृत है 55वें श्लोक से निर्गुण की उपासना का प्रकरण प्रारंभ हुआ, वो निर्गुण उपासना प्रकृत मानी जाएगी। फिर से उसी उपासना की चर्चा प्रारंभ करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी कि तिष्ठन्तु मूढ़ा प्रकृता निर्गुणोपास्ति रीर्यते। विद्यैक्यात् सर्वशाखा स्थान गुणान् नत्रोपसंहरेत। तो कहते हैं मूढ़ा तावत् तिष्ठन्तु, जो अविवेकी जन हैं वे क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा तो एक किनारे की जाए। जो अल्पसंख्यक हैं मुमुक्षु उनके हित के साधन की चर्चा फिर से प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकृता निर्गुणोपास्ति ईर्यते, जो प्रकृत हैं प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित हैं निर्गुण की उपासना उसे ईर्यते, उसको बताया जाता है। उसका कथन किया जाता है कि वो कैसे की जाती है। तो आगे कह रहे हैं उत्तरार्ध में विद्या ऐक्यात इत्यादि से कि ये निर्गुण उपासना ये भी एक विद्या है, सगुण उपासना भी विद्या है तो और ब्रह्म ज्ञान भी विद्या है। तो विद्या के तीन प्रकार हुए, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूप एक ब्रह्म विद्या, वो ज्ञान रूपा हुई बोध रूपा हुई, और उसकी साधन रूप दो विद्याएं हैं, वो है सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या, ये अनुष्ठेय विद्याएं हैं दोनों। अनुष्ठेय कहा जाता है साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाली विद्या को, उपासना को, उसका अनुष्ठान होता है, और जो प्रयत्न से न होकर के प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन होता है उसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान में और उपासना में दांतर है, वो आगे आएगा। कर्तृतंत्र उपासना है और वस्तुतंत्र ज्ञान है, ऐसा तंत्र कहते अधीन को। कर्तृतंत्र यानी कर्ता के अधीन है जो अनुष्ठेय साधन, तो ये सगुण ब्रह्म विद्या रूप साधन भी और निर्गुण ब्रह्म विद्या रूप साधन भी, निर्गुण उपासना रूप साधन भी कर्तृतंत्र है, उपासना है, अनुष्ठेय है। और वो किसका साधन है? जो जो अनुष्ठेय साधन है वो सब का सब ज्ञान का साधन होगा, न कि मोक्ष का। और मोक्ष का साधन तो है वस्तुतंत्र जो ब्रह्म ज्ञान, वो मोक्ष का साक्षात साधन है। मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति, वो केवल ज्ञान से होगी, और ज्ञान के अनेक साधन है। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों प्रकार के दोष होने से उन उन दोषों के निवृत्ति के लिए अलग अलग साधन जो बताए गए वे सब के सब तत्त्व दोषों की निवृत्ति द्वारा ज्ञान के साधन बनते हैं। तो जैसे निष्काम कर्मयोग मलादि निवृत्ति द्वारा ज्ञान का साधन है, ऐसे निर्गुण उपासना भी विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा ज्ञान का साधन बनेगी, और मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है अकेला, उसको कोई सहयोग की जरूरत नहीं है अध्यास को निवृत्त करने के लिए, वो अकेला ही समर्थ है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं, उपासनाएं प्रयत्न से निष्पन्न होती है, इसलिए निर्गुण विद्या जो निर्गुण ब्रह्म विद्या प्रयत्न साध्य है वो उपासना रूपा है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना वो प्रयत्न साध्य है, अनुष्ठेय होने से उसका अनुष्ठान होगा। तो ये कहते हैं वो अनुष्ठेय, हाँ तो वो आवर्तन करना भी तो प्रयत्न करना पड़ता है ना, प्रयत्न से आवर्तन होता है, आवर्तन करना ही उपासना है, लेकिन आवर्तन करने में जो प्रयत्न किया जा रहा है वह उपासना का साधन हुआ, उस प्रयत्नाधीन आवर्तन हुआ, आवर्तन रूपा उपासना हुई। तो उसमें सगुण ब्रह्म विद्याएं जो है ना, सगुण ब्रह्म उपासनाएं, वे तो अनेकों प्रकार की हैं, उनमें भेद है। उपनिषदों में शांडिल्य विद्या, तहर विद्या, वैश्वानर विद्या, ऐसी बहुतों प्रकार की सगुण ब्रह्म उपासनाएं आई हैं। तो सगुण ब्रह्म विद्याएं जैसी अनेकों प्रकार की होती हैं और ऐसी निर्गुण ब्रह्म विद्या भी यानी उपासना भी एक ही प्रकार की है या अनेकों प्रकार की है? हाँ, निर्गुण उपासना तो एक ही प्रकार की होगी, भले ही अनेकों उपनिषदों में कही गई है। पहले आया था ना कल, वो नृसिंह तापनी उपनिषद में भी कही गई है, तो कठ उपनिषद में भी, मांडुक्य में भी, मुंडक में भी, तैतरीय में भी, कई उपनिषदों में है। तो अनेकों उपनिषदों में कही गई होने पर भी निर्गुण ब्रह्मोपासना अलग अलग नहीं, एक है। सगुण ब्रह्मोपासनाएं अलग अलग शाखा में कही गई इसलिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है। खाली अलग अलग शाखास्थ उपनिषदों में कहा जाना ये विद्या भेद का हेतु नहीं है। विद्या भेद में हेतु होता है गुणों का भेद और विधि का भेद। जो विधि वाक्य होते हैं उनमें सगुण उपासना के भेदक दूसरे दूसरे होते हैं, ऐसे यहां पर सगुण उपासना का भेदक हेतु कोई न होने से निर्गुण ब्रह्म उपासना को एक ही माना जाएगा। तो ये कहते हैं विद्या ऐक्यात सर्वशाखा स्थान गुणान अत्र उपसंहरेत। अत्र यानी निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम, अत्र शब्द निर्गुण ब्रह्म विद्या का परामर्शक है। निर्गुण ब्रह्म विद्या यानी निर्गुण ब्रह्म उपासना। उस निर्गुण ब्रह्म उपासना के समय उपास्य जो निर्गुण ब्रह्म, उसमें गुणान उपसंहरेत, गुणों का उपसंहार करना है। उपसंहार कहते हैं अलग अलग शाखाओं में कहे गए का अन्वय करना, वहां से लाना उपास्य में चिंतन के लिए। तो निर्गुण ब्रह्म में गुणों का उपसंहार करना है, निर्गुण ब्रह्म के भी उपासना के लिए गुण समझना है, अलग अलग शाखा में कहे गए। इसलिए कहा गया कि सर्व शाखा स्थान यानी सर्व शाखा यानी अलग अलग उपनिषदों, वेदों की शाखा की उपनिषदों ने जो निर्गुण ब्रह्म में अलग अलग गुण बताए हैं, वे सब गुण उनको निर्गुण उपासक एक ब्रह्म में समन्वित कर ले, समझ ले, सारे शाखाओं के गुणों का एकत्रीकरण करके निर्गुण ब्रह्म में वे समझ ले और फिर उसकी उपासना करें। एक ही उपासना है निर्गुण उपासना, अनेक नहीं। तो ये जो गुण है निर्गुण में उपसंहृत होने वाले, सभी शाखा में कहे गए जो गुण हैं, उन गुणों को कहां कौन सा गुण कहां कौन सा गुण कहां उस जान ले, और जान करके मान लो एक उपासक का अपने अपने गोत्र और कुल के अनुसार एक वेद होता है ना, और उस वेद की एक शाखा विशेष होती है, उसका अध्ययन करना तो जरूरी होता है उसे, और उसकी जो उसका जो वेद है उसकी जो शाखा है उस शाखा में निर्गुण ब्रह्म के जो गुण कहे हैं उतने ही गुणों से लक्षित करके निर्गुण ब्रह्म का वो चिंतन करेगा। अपनी शाखा में निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों के द्वारा जो गुण बताए गए निर्गुण ब्रह्म के लक्षक, उतने ही गुणों से निर्गुण ब्रह्म को लक्षित करके वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करेगा। या दूसरी शाखा में बताए गए अन्य भी ब्रह्म के लक्षक गुण हैं, उनको भी उन शाखाओं से अध्ययन द्वारा समझ करके ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक तया उन गुणों को भी उपासना के अवसर पर अपने उपास्य ब्रह्म में समझेगा और चिंतन करेगा, तो माना जाएगा सर्व शाखास्थ जो गुण अलग अलग शाखा में बताए गए ब्रह्म उपलक्षक तया जो गुण है उन गुणों को अपनी शाखास्थ गुणों के साथ ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में जोड़ करके फिर उन सारे गुणों से उपलक्षित हुआ जो ब्रह्म उसका मैं के रूप में चिंतन, वो हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण उपासना ये यहां पर कह रहे हैं। तो ये विद्यारण्य स्वामी जी ने ये कहा कि सारे उपनिषदों ने निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में जो अलग अलग गुण बताए हैं उन सब गुणों को निर्गुण उपासक अपने उपास्य ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में समझेगा और उनसे उपलक्षित ब्रह्म की मय के रूप में उपासना करेगा। उन गुणों से उपलक्षित ब्रह्म की अहंतया वृत्ति का आवर्तन करेगा, तो निर्गुण उपासना हो जाएगी। ये विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा। विद्यारण्य स्वामी जी वेदांतियों के लिए प्रमाण नहीं है विद्यारण्य स्वामी जी का वाक्य। वेदांत अर्थ के जिज्ञासुओं के लिए तीन महापुरुषों का वाक्य ही प्रामाणिक माना जाता है। एक तो ईश्वर, दूसरे व्यास जी और तीसरे शंकराचार्य जी। तो ईश्वर का वाक्य है श्रुति, शास्त्र यौनित्व अधिकरण ये बताता है ना कि ईश्वर की रचना वेद है, इसलिए ईश्वर का वाक्य है। तो वेद श्रुति जिसको कहा जाता है, और व्यास जी और शंकराचार्य जी, इन तीन में से कोई न कोई यदि कुछ बात कहता है तो वो वेदांति के लिए उपादेय होती है, हित का साधन मानी जाती है। और इनमें भी पूर्व पूर्व को ज्यादा प्रमाण माना जाता है, शंकराचार्य जी से अधिक प्रमाण व्यास जी, व्यास जी से भी अधिक प्रमाण श्रुति, वेद अंतिम प्रमाण अंतिम निर्णय, यानी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, शंकराचार्य जी लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं व्यास जी ब्रह्मसूत्र, सुप्रीम कोर्ट हैं श्रुति। श्रुति ने जो बताया वो अकाट्य है, फिर उसकी अपील नहीं होती। शंकराचार्य जी की अपील तो निर्णय की जा सकती है व्यास जी के पास, व्यास जी के निर्णय की अपील आप कर सकते हैं श्रुति के पास, और श्रुति ने जो निर्णय दिया उसकी वो वही श्रुति ही परमात्मा की बात है, परमात्मा भी वीटो नहीं कर सकते श्रुति पर, क्योंकि वही तो उन्हीं की बात है, अपनी बात थोड़ी काटेंगे। तो अलग अलग शाखाओं में कहे गए जो गुण हैं उनसे उपलक्षित, उन सारे गुणों को उपलक्षकतया निर्गुण ब्रह्म की उपासना के समय लाना है, और उन सब गुणों से उपलक्षित ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन करना है, ये कह रहा है। तो कहते हैं ये 67वां श्लोक किसका है? विद्यारण्य स्वामी जी का। तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, तो विद्यारण्य स्वामी जी को जो मुमुक्षु होता है ना, मोक्ष चाहने वाले वैदिक, वे कहते हैं आपकी बात तो तब प्रमाण मानी जाएगी जब इन तीन में से कोई न कोई आपकी इस बात का समर्थक मिलेगा, तब तो माना जाएगा कि आप ठीक कह रहे हो, नहीं तो आपकी बात को कोई प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो कौन है इसको बताने वाले कि सभी शाखास्थ गुणों का उपसंहार निर्गुण ब्रह्म उपासना के समय करना है, इसको बताने वाला कोई शंकराचार्य जी का वाक्य या तो व्यास जी का वाक्य प्रमाण के रूप में आपके पास है? तो कहा है ब्रह्मसूत्र, ये व्यास जी का वाक्य है ना, तो ब्रह्मसूत्र का जो साधन अध्याय, उसका तीसरा अध्याय का नाम है साधन अध्याय, और साधन अध्याय का जो तीसरा पाद, तीसरे अध्याय का तीसरा पाद, उसका जो पहला ही सूत्र है वो है प्रमाण, इसमें कि सभी शाखास्थ गुणों का निर्गुण ब्रह्म की उपासना के अवसर पर उपसंहार निर्गुण ब्रह्म उपासक करें, ये बताने वाला ब्रह्म सूत्र का वाक्य प्रमाण है, यानी ब्रह्म सूत्र के द्वारा स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, और व्यास जी ने जो बात कही है उसको हम अनुवाद मात्र कर रहे हैं उसका, इसलिए हम तो अनुवादक हैं, पहुंचाने वाले हैं आप तक, मुमुक्षुओं तक, ये विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन कहा है व्यास जी ने, और यदि हमारे बात पर विश्वास नहीं है तो ब्रह्म सूत्र देख लो, पढ़ लो, वो ब्रह्म सूत्र टीका में टीकाकार ने बताया है कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात, कोष्टक में क्या लिखा है? ब्र सु, ब्र याने ब्रह्म, सु याने सूत्र, तो ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ है व्यास जी का, और आगे लिखा है 3-3-1, तीन यानी तीसरा अध्याय, और दूसरे तीन का अर्थ है तीसरा पाद, और एक का अर्थ है प्रथम अधिकरण, अधिकरण प्रथम अधिकरण, तो पहले यानी तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला अधिकरण, उस अधिकरण में व्यास जी ने यही निर्णय दिया कि निर्गुण ब्रह्म उपासक को केवल अपनी शाखा में निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षकतया जो गुण बताए हैं उतने ही गुणों से ब्रह्म को उपलक्षित नहीं करना है, अपितु दूसरी दूसरी शाखा की उपनिषदों ने भी निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में जो जो गुण बताए हैं उन उन गुणों को भी समझना है, और उनसे उपलक्षित ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन करना है, तो ये हो जाएगी निर्गुण ब्रह्म उपासना। ऐसा क्यों करना है? तो कहते विद्या ऐक्यात, विद्या ऐक्यात शुरू में है ना, मूल में श्लोक में पहला पद उत्तरार्ध में विद्या ऐक्यात, ये उपासना एक होने से, निर्गुण उपासनाएं अनेक नहीं है। मैं तो माना जाएगा कि ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद में जो ब्रह्म के गुण बताए गए हैं निर्गुण के लक्षक, उतने गुणों से ही ऋग्वेद में ऋग्वेदीय लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे तो वो उपासना अलग हो जाएगी, यजुर्वेदी दूसरे, तो सामवेदी की निर्गुण ब्रह्म उपासना वो अलग हो जाएगी। सारे वेदों में अलग अलग शाखाओं में निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है और निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक तया जो गुण बताए हुए हैं वे सारे गुण एक ही उपासक वहां वहां से ले आएगा और उनसे ब्रह्म को उपलक्षित करेगा और वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा चिंतन करेगा तो माना जाएगा। चाहे वो ऋग्वेदीय निर्गुण ब्रह्म का उपासक जो उपासना कर रहा है, वो उपासना भी सामवेदीय के द्वारा की जाने वाली निर्गुण की उपासना भी, वो अलग अलग नहीं एक ही उपासना है। सब उपासक उनके अलग अलग वेद होने पर भी उपासना निर्गुण की एक है, निधिध्यासन एक है। नहीं तो निर्गुण की उपासनाएं अलग अलग होगी ना, तो अलग अलग संस्कार पड़ेगा बुद्धि में, जैसा ब्रह्म का मैं के रूप में ग्रहण करेंगे वैसा ही संस्कार पड़ेगा ना। तो अलग अलग गुण वाला ब्रह्म होगा यदि अलग अलग उपास्य होने से, तो सामवेदी के बुद्धि में ब्रह्म का अलग प्रकार से संस्कार पड़ेगा, ऋग्वेदी की बुद्धि में अलग पड़ेगा, तो यजुर्वेदी के अलग पड़ेगा, अथर्ववेदियों के उपासक के बुद्धि में अलग संस्कार पड़ेगा, तो फिर ब्रह्म ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। इसलिए उपास्य ब्रह्म एक ही प्रकार का है, उससे एक ही प्रकार का मैं के रूप में ब्रह्म का संस्कार पड़ेगा, अलग अलग नहीं। और जिस रूप से संस्कार पड़ेगा उसी रूप से ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, तो सबको एक जैसा ज्ञान होगा ब्रह्म का। हाँ, यानी वो गुण उसे उपलक्षित नहीं हुआ तो वो गुण उसमें नहीं रहेगा। तो कहीं जैसे सत्यत्व गुण नहीं है, आनंद रूप ही मात्र लेंगे तो कल्पित आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसी कहीं वो बुद्धि न बन जाए, इसके लिए सत्य जहां कहा है वहां से सत्यत्व गुण भी आनंद गुण के साथ अनुवर्तित होगा। जहां आनंद कहा है नहीं कहा और सत्य मात्र कहा है तो वहां से आनंद को भी लाया जाएगा, जहां सत्य कहा है वहां पर। तो सत चित रूप ब्रह्म वो मैं हूं ऐसा होगा, आनंद रूप ब्रह्म मैं हूं। तो कहीं केवल चित ही कहा तो मात्र चेतन ही मैं हूं लेकिन आनंद नहीं हूं सत नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं। सब जगह जहां जहां जिस जिस रूप में कहा है उन रूपों से उनको कहा जा रहा है गुण, उन शब्दों के अर्थों को, और उससे शब्दातीत ब्रह्म को लक्षित करके मैं के रूप में उसका चिंतन, ये निर्गुण की उपासना होगी। अभी कई श्लोकों में आ रहा है ये। थोड़ी सी टीका है उत्तरार्ध के अवतरण के रूप में, इसे देखिए। सर्व वेदांत प्रत्ययम् चोदनाद्य विशेषात् इति उक्त न्यायेन निर्गुण उपासनस्य एकत्वात् तासु तासु शाखासु श्रुता श्रुतान उपास्य गुणान एकत्र उपसंहृत्य उपासनम कर्तव्यम इत्याह विद्येति। ते कहते हैं कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, इस अधिकरण में व्यास जी ने जो बताया, न्याय शब्द का अर्थ है अधिकरण, अधिकरण का पर्यायवाचक है न्याय शब्द। सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय कहो या सर्व वेदांत प्रत्यय अधिकरण कहो, एक होता है अर्थ। तो निर्गुण उपासनस्य एकत्वात्, तो निर्गुण उपासना अनेक न होने से, एक ही होने से, तासु तासु शाखासु यानी अलग अलग शाखाओं में, श्रुतान उपास्य गुणान, श्रुतान ये द्वितीयांत पद निकला रामान के तरह अलग, और गुणान का विशेषण है ना वो उपास्य गुणान। तो उपास्य है निर्गुण ब्रह्म, उसके जो गुण, उसके गुण बताए, निर्गुण के भी गुण होते हैं, आनंद सत चित मुक्त मुक्तत्व, ये सब उसके गुण हैं, और उन गुणों से उसकी निर्गुणता बाधित नहीं होती, निर्गुण भी रहता है वो, और इनको गुण भी कहा जाता है। दो प्रकार के गुण बताए जाएंगे, विधेय और निषेध्य। तो आनंद आदि विधेय गुण है, अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण है, और इन गुणों से लक्षित होता है निर्गुण। ये सीधे स्वरूप में अंतर्भूत नहीं होते, इनसे परिलक्षित होता है, गुणों के वाचक इन शब्दों से परिलक्षित होगा ब्रह्म। इसलिए ये ब्रह्म स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होंगे, उपलक्षक कहा जाता है कि जैसे काकवंतम देवदत्तस्य गृहम, कोई देवदत्त का मित्र उसे मिलने के लिए आया, कभी देवदत्त का घर उसने देखा नहीं है, और जो एड्रेस दिया था वहां पर सब मकान एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही बिल्डर ने बनाए हुए हैं बंगलों, तो उसमें नेम प्लेट लगाने की पहले पद्धति थी नहीं, तो नेम प्लेट दिख नहीं रही है, तो पूछता है कि देवदत्त का घर एक जैसे दिखने वाले इन घरों में से कौन सा है। तो योगा योग से वहां पर बैठा था कौवा देवदत्त के घर पर, कौवा बैठा हुआ है, तो कहते हैं जो उसी गली में रहने वाला व्यक्ति जानता है देवदत्त का वो घर है, तो नए व्यक्ति ने उसे पूछा, तो कहता है ये जो मकान दिख रहे एक एक जैसे चार पांच, उसमें से एक मकान में कौवा बैठा हुआ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कहां दिख रहा है वो मकान जिस पर कौवा बैठा है, वही देवदत्त का घर है, काकवंतम देवदत्तस्य गृहम। तो चलते चलते गया वहां तक तो कौवा उड़ गया, अब कौवा जिस घर पर बैठा है वो देवदत्त का घर है, अब तो किसी भी घर में नहीं है, तो बाकी तीन घरों में वो प्रवेश नहीं करता, जिस घर पर से कौवा उड़ गया उस कव्वे ने घर को घर का परिचय करा दिया, यही घर देवदत्त का घर है करके, तो उसी घर में वो प्रविष्ट होगा, वहीं पर देवदत्त उसे मिलेगा। लेकिन जिस समय वो घर में प्रवेश कर रहा है उस समय वहां पर कौवा नहीं है, लेकिन ठीक से उसने देवदत्त के ही घर का ज्ञान करा दिया, उसे उपलक्षक कहा जाता है, कौवा हो गया देवदत्त के घर का उपलक्षक। ऐसे निर्गुण के जो गुण होते हैं ना, वे निर्गुण उपासना करते समय निर्गुण स्वरूप के उपास्य के स्वरूप के अंदर प्रविष्ट नहीं होते हैं। जैसे वो घर का हिस्सा नहीं है कौवा, लेकिन घर का परिचायक है, घर का ठीक से परिचय कराता है। ऐसे ही अलग अलग शाखाओं में निर्गुण ब्रह्म का उत्तम अधिकारी को ठीक से ज्ञापन हो जाए, ग्रहण हो जाए, इस दृष्टि से श्रुति ने जो गुण बताए हैं वे होते हैं निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक, और उन उपलक्षक गुणों को सब शाखाओं में एक ही गुण को निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक के रूप में नहीं बताया है। कहीं सत को बताया तो कहीं चित्त को बताया तो कहीं आनंद को बताया तो कहीं मुक्तत्व को बताया तो कहीं कुछ को बताया, अलग अलग गुण है, उनसे उपलक्षित निर्गुण को कराया। और वो जो निर्गुण है इन गुणों से लक्षित, तो उन सारे गुणों से लक्षित निर्गुण को मैं के रूप में ग्रहण करना है या अपनी शाखा में बताए गए गुणों को मात्र लक्षित करने के लिए लेना है? तो कहते हैं सब शाखाओं में जितने भी गुण बताए हैं उन सारे गुणों को उस निर्गुण के लक्षक के रूप में उपासक समझ लें, अपने बुद्धि में लाएं, और फिर उनसे लक्षित जो स्वरूप में तो उनका प्रवेश नहीं है, जैसे घर का अंग नहीं है, अवयव नहीं है वो कौवा, तो उपास्य के स्वरूप में प्रविष्ट न करे गुणों को, लेकिन उनसे समझ ले कि यही मेरा उपास्य है, और फिर हाँ फिर उसका मैं के रूप में चिंतन करें, तो वो हो जाएगी निर्गुण की उपासना, ये निधिध्यासन है। तो निर्गुण का ही मैं के रूप में संस्कार बुद्धि में पड़ेगा और सबको पड़ेगा एक जैसा ही, और इसलिए ज्ञान भी फिर एक जैसा ही सबको होगा, अलग अलग प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, और उस ज्ञान से सबके अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, तो एक ही स्वरूप की प्राप्ति होगी, एक ब्रह्म भाव में अवस्थित होते, नहीं तो अनेक ब्रह्म हो जाएंगे निर्गुण ब्रह्म भी। इसलिए व्यास जी ने कहा सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादि अविशेषात्मे, तो यहां पर कहा कि निर्गुण ब्रह्म उपासनस्य एकत्वात् तासु तासु शाखासु श्रुतान उपास्य गुणान एकत्र उपसंहृत्य, तो एक ही में उपसंहार करके फिर उपासनम कर्तव्यम, निर्गुण की उपासना उपासक करें। इसे विद्याक्या सर्वशाखास्थान गुणान अत्र उपसंहरेत इससे कहा गया। अब 68वें श्लोक की अवतरण टीका है, जिन गुणों का उपसंहार करना है निर्गुण के उपलक्षक के रूप में, उन गुणों के अवांतर दो प्रकार हैं। उपनिषदों ने निर्गुण के उपलक्षक गुण दो प्रकार के बताए हैं, अनेकों गुणों का अंतर्भाव दो प्रकार में होता है, कुछ गुण होते हैं विधेय गुण, कुछ होते हैं निषेध्य गुण। ये बता रहे हैं कि तेच गुणा द्विप्रकारा, जिन गुणों का उपसंहार करना है वे गुण, ते गुण शब्द से लेना, वो दो प्रकार के हैं, वो दो प्रकार हैं विधेय और निषेध्य। तत्र आनंदो ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म नित्य शुद्धो बुद्ध सत्यो मुक्तो निरंजनो विभुरद्वय आनंदः परः प्रत्यग एक रसः इत्यादयो ये विधेय गुणा तेषाम उपसंहारः आनंदादय प्रधानस्य इति अस्मिन् अधिकरणे अभीत। तो ये जो दो प्रकार के गुण हैं, विधेय गुण निषेध गुण, उनमें से विधेय गुण इन वाक्यों से कहे गए हैं। ये वाक्य हैं अलग अलग शाखा के वाक्य, विधेय गुण भी एक ही शाखा में नहीं कहे गए हैं, अलग अलग शाखा में कहे गए। ऐसे निषेध गुण भी अलग अलग शाखा में कहे गए हैं। तो उसमें से यजुर्वेद के दो वाक्य बताए जा रहे हैं, आनंदो ब्रह्म, ये भी यजुर्वेद का वाक्य है। यजुर्वेद भी दो प्रकार का है, कृष्ण शुक्ल भेद से। तो कृष्ण यजुर्वेद की है तैत्तरीय उपनिषद, ये तैत्तरीय उपनिषद का है आनंदो ब्रह्म। हाँ हाँ हाँ, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा में ये आया तैत्तरीय उपनिषद, और उसका ये वाक्य है आनंदो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को आनंद रूप बताने वाला। तो आनंद ये गुण हुआ, तैत्तरीय शाखा में बताया गया। तो शुक्ल यजुर्वेद की वेद का ये वाक्य है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, कान्व शाखा का, कान्व और माध्यम इन दोनों शाखा में आता है। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और नित्य यहां पर विज्ञान को भी बताया, आनंद को भी बताया। विज्ञान यानी, तो विज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान, निर्विषय ज्ञान, निर्विषय ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। क्या फाइनल क्या होता है? अच्छा अच्छा, तो विशुद्ध ज्ञान और आनंद यानि विशुद्ध आनंद, निर्विशेष आनंद, यही ब्रह्म का स्वरूप है ये कहा गया। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें चिद रूपता आनंद रूपता दोनों बताई गई, और आनंदो ब्रह्म इसमें केवल आनंद रूपता बताई। तो वहां तैत्तरीय शाखा में नहीं कहा गया विज्ञान, ये यहां कान्व शाखा से ले जाया जाएगा, ये उपसंहार होगा। और ये नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद है, इसका वाक्य है, इसमें बहुत सारे गुण बताए हैं, नित्य शुद्धो बुद्ध सत्य मुक्तो निरंजनो विभु अद्वय आनंद परह प्रत्यग एक रस। वो नित्य है, तो नित्यत्व एक गुण हुआ निर्गुण का उपलक्षक, और शुद्ध है का मतलब स्वभावतः उसमें कोई अशुद्धि है ही नहीं, और बुद्ध है का मतलब चेतन है, सत्य है का मतलब अबाधित है, और बंधन ने कभी उसे छुआ ही नहीं, नित्य मुक्त है, निरंजन है का मतलब निर्दोष है। अन्यन कहते हैं दोष को, निरंजन का अर्थ हो जाएगा निर्दोष। विभू कहेंगे व्यापक को। अद्वय है का मतलब एक है, सजातीय विजातीय अंतर से रहित है, दूसरा नहीं है, सजातीय भी विजातीय भी। और आनंद है, पर है का मतलब अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। पर शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म आभ्यंतर व्यापक, और प्रत्यक यहां आभ्यंतर बताया, इसके पर शब्द से सूक्ष्म लीजिए, क्योंकि विभू शब्द से व्यापक को बताया गया है और प्रत्येक शब्द से आभ्यंतर को बताया जा रहा है, तो पर शब्द से सूक्ष्म को लेना। और एक रस वो एक रूप है, जिस आभ्यंतर का अर्थ है जिसके अंदर फिर दूसरा कोई नहीं है, जो सबके अंदर है। तो जैसे ये शरीर है अन्नमय कोष, इससे आभ्यंतर है प्राण, प्राणमय कोष उससे भी आभ्यंतर है, मनोमय से भी अभ्यंतर है, विज्ञानमय विज्ञानमय से भी अभ्यंतर है, आनंदमय से अभ्यंतर है ब्रह्म, और ब्रह्म से अभ्यंतर वो आभ्यंतर, वो है सर्वाभ्यंतर। और बाकी प्राणमय से लेकर के आनंदमय में अभ्यंतरता सापेक्ष है, और निरपेक्ष अभ्यंतरत्व केवल ब्रह्म में है, उससे अभ्यंतर फिर दूसरा कोई नहीं। प्राण में तो अन्नमय की अपेक्षा अभ्यंतरत्व होने पर भी मनोमय की अपेक्षा बाह्यत्व है, मनोमय की दृष्टि से देखो तो बाह्य है, अन्नमय की अपेक्षा से देखो तो अभ्यंतर है। ऐसे आनंदमय विज्ञानमय और अन्नमय आदि पूर्ववर्ती चार की अपेक्षा से अभ्यंतर होने पर भी ब्रह्म की दृष्टि से बाह्य ही है, और ब्रह्म किसके दृष्टि में बाह्य है, वो आभ्यंतर ही है बाह्य नहीं है। उसे विवर्त उपादान कारण कह सकते हैं, अधिष्ठान कह सकते हैं, आभ्यंतर सर्वाभ्यंतर कह सकते हैं। तो शुद्ध का मतलब अशुद्धि रहित, तो जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि से रहित। तो ये सब गुण बताए गए हैं दृशिंग उत्तरीय उत्तर तापनीय उपनिषद में, नृ वो लिखा है ना, यानी दृशिंग उत्तरीय उत्तर तापनीय उपनिषद ऐसा एक है। तो ऐसे आदि शब्द से अन्य अन्य उपनिषद वाक्यों को भी लेना, जो निर्गुण ब्रह्म के उपलक्षक गुण बता रहे हैं, उन वाक्यों के द्वारा बताए गए जितने गुण हैं वे हैं विधेय गुण, और इन विधेय गुणों का उपसंहार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के अवसर पर निर्गुण उपासक करें, यह बात व्यास जी ने आनंदादयः प्रधानस्य, ये जो ब्रह्म सूत्र के ही तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का ग्यारहवां सूत्र है, इसमें बताइए है। इसलिए व्यास जी सम्मत है। तो विद्यारण्य स्वामी जी तो केवल उनकी बात को, व्यास जी की बात को हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे हितैषी बन करके, वो अपने मन से नहीं बता रहा है कि गुणों का उपसंहार निर्गुण उपासक करें, एक ही उपासना होने से, ये अपने मन से विद्यारण्य स्वामी जी नहीं बता रहे हैं। इति अस्मिन् अधिकरणे अभीतः, इस अधिकरण में बताया, इसे कह रहे हैं अड़सठवें श्लोक में, अड़सठवें श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे परसों।